हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव को कहीं से लीड मिली थी कि मिली और उसके भाई बहनों को कबीर ने एक पुराने पुलिस स्टेशन में किडनैप करके रखा था। ध्रुव ने किसी की हेल्प भी नहीं मांगी थी और वो अकेले ही उन सबको छुड़ाने के लिए निकल गया था। वहां तैनात किए गए सभी लोगों को ध्रुव ने एक झटके में मार डाला था। आगे जाने पर उन सबके हेड ने ध्रुव को पकड़ लिया था और वो अपनी गन से ध्रुव का गला दबा रहा था। वो इंसान जो भी था वो ध्रुव की सच्चाई जानता था। उसने बातों ही बातों में ध्रुव की डेड बॉडी कबीर को गिफ्ट करने की बात कही थी, हालांकि उसने कबीर का नाम नहीं लिया था। दम घुटने की वजह से ध्रुव का चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा था। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपना अंगूठा उस आदमी की आंख में घुसेड़ दिया था। वो दर्द से जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे पागल आदमी, वो आदमी चिल्लाते हुए बोला। ध्रुव पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ था। उसने अपना अंगूठा उस आदमी की आंख में घुसा रखा था। दर्द होने की वजह से उस आदमी की पकड़ ध्रुव पर ढीली पड़ गई थी। जैसे ही उसने ध्रुव को छोड़ा, ध्रुव उसकी तरफ पलटा। जब जानते हो मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं, तो मुझे इस तरह हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ध्रुव ने बेइंतहा सर्द आवाज में कहा। वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा था। तभी ध्रुव उसके पास आया और उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। ध्रुव ने अपनी गन से उस आदमी की दूसरी आंख में गोली मार दी थी। वो आदमी फिर से दर्द से चिल्लाया, ध्रुव पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने पूरी रिवॉल्वर की गोलियों से उस आदमी के माथे को भून डाला था। ध्रुव ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, बाद में दूसरी तरफ पलटा तो सामने एक बड़ी सी जेल थी। इसके अंदर मिली और उसके तीन छोटे भाई बहन थे। वे हैरानी से आंखें बड़ी किए हुए ध्रुव को देख रहे थे। ध्रुव ने उस आदमी की गन उठाई और जेल पर लगे हुए ताले पर शूट किया। ताला खोलने के बाद उसने उन सबको बाहर निकलने का इशारा किया, लेकिन डर के मारे वे वहीं पर खड़े हुए थे। ध्रुव ने गहरी सांस ली और नॉर्मल आवाज में कहा, बाहर आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम हमें मार दोगे, तुमने उन्हें भी बहुत बुरी तरह से मारा है, प्लीज मेरे भाई बहनों को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मिली ने घबरा कर कहा। मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं बचाने के लिए आया हूँ, मुझे तारा ने भेजा है, तुम्हारी बड़ी बहन तारा अग्निहोत्री। उन सबको रिलैक्स करने के लिए ध्रुव ने तारा का नाम लिया। तारा का नाम सुनकर मिली के भाई बहन उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। उनके कोई तारा नाम की बहन नहीं थी, लेकिन मिली ने राहत की सांस ली। वो उनका हाथ पकड़कर जेल से बाहर निकली। मैं नहीं जानती कि ये लोग कौन थे और उनकी हमसे क्या दुश्मनी थी, लेकिन पिछले दो महीने से इन लोगों ने हमें किडनैप करके रखा था, मिली ने बाहर निकलकर ध्रुव को बताया। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं तो तुम्हें तुम्हारे घर सुरक्षित भेज दूंगा, जल्द ही तारा भी तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाएगी, वो बिल्कुल ठीक है, उसकी चिंता मत करो, ध्रुव ने जवाब दिया। मिली और उसके भाई बहनों को देखकर कहीं ना कहीं ध्रुव के दिल को सुकून मिल रहा था कि तारा उसे धोखा नहीं दे रही है। ध्रुव ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया, हालांकि ये उसके पास अच्छा मौका था कि जब वो कबीर से आमने सामने मिल सकता था, लेकिन ध्रुव ने फिलहाल मिली के भाई बहनों को यहाँ से सुरक्षित जगह ले जाने का सोचा। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही ध्रुव ने उन सबकी तरफ देखा। उनके कपड़े काफी मैले लग रहे थे, उनके शरीर पर किसी तरह की चोट का निशान नहीं था, इसका मतलब उनके साथ कोई टॉर्चर नहीं किया गया था, बस उन्हें बंद करके रखा गया था। गाड़ी के अंदर बैठो, ध्रुव ने नरम आवाज में कहा, वो नहीं चाहता था कि बच्चे उससे डर जाएं। ठीक है, बैठ जाएंगे, लेकिन आपके खून लगा है, वो तो साफ कर लीजिए, मिली ने हिचकिचाकर कहा। मिली ने अपने भाई बहनों की आंखें बंद कर दी थी, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने ध्रुव को उस आदमी की आंख फोड़ते हुए देखा था। ध्रुव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसने गाड़ी को अनलॉक किया और उन लोगों को अंदर बैठने का इशारा किया। फिर ध्रुव ने पानी की बोतल निकालकर अपना मुंह और हाथ धोए। ध्रुव गाड़ी के अंदर बैठने जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो उसके सामने काफी डर गया था। ध्रुव ने उसे नहीं मारा था क्योंकि वो चेहरे से ही मासूम लग रहा था, उसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो उस प्रोफेशन में नया था। ध्रुव ने गहरी सांस ली और उसके पास जाकर बोला, नाम क्या है तुम्हारा? निश, मुझे सब निश कहते हैं, मेरा नाम निश्चय है, उस लड़के ने हिचकिचाते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो दुबला पतला सा दिखने वाला लड़का उम्र में 20-21 के आसपास लग रहा था। यहाँ उनके साथ काम क्यों कर रहे थे, ध्रुव ने उसे घूरते हुए पूछा। पैसों की जरूरत थी, आज ही आया था, ऊपर से एक पुलिस वाले ने काम दिया था तो सोचा अच्छा काम ही होगा, निश्चय ने नजर झुकाकर कहा। गाड़ी के अंदर बैठो, ध्रुव बोला तो वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ध्रुव उसके जवाब के इंतजार किए बिना ही गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो पीछे से दौड़कर आया और बोला, लेकिन आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो? मैंने आप पर अटैक करने की कोशिश की थी, मुझे आपके दुश्मन ने यहाँ काम पर रखा है, फिर आप मुझ पर यकीन कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम वो नहीं हो जो दिखने की कोशिश कर रहे हो, मेरे साथ चलो और बताओ कि क्यों पैसों की जरूरत है। देखकर साफ लग रहा है मजबूरी में काम कर रहे थे, जो करना चाहते हो वो करो, पर ये नहीं करने दूंगा, हमारी दुनिया में इनोसेंट लोगों की कोई जगह नहीं है, खासकर मजबूरी में आए लोगों की, ध्रुव ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। निश्चय ध्रुव के बगल वाले सीट पर आकर बैठ गया था। ध्रुव ने गाड़ी ड्राइव की, उसने गाड़ी स्टार्ट करते ही तेज आवाज में मिली से पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? क्या
आप हमारे घर जाओगे, लेकिन आप हमें वहां तक छोड़ दो, हम खुद ही निकल लेंगे, मिली ने डरते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं ध्रुव के सामने ये सच्चाई ना खुल जाए कि तारा उनकी बहन नहीं है। मैंने एड्रेस पूछा है, चुपचाप बताओ, ध्रुव ने बिना किसी भाव के कहा। धारावी के स्लम एरिया में रहते हैं हम, मिली ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ध्रुव ने आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ ही देर में वो मिली के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुका था। ध्रुव उस जगह पर पहले कभी नहीं आया था। कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंच गए थे। वहां की रोड ज्यादा चौड़ी नहीं होने की वजह से गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। आप गाड़ी को यहीं रोक दीजिए, हम यहां से अपने घर चले जाएंगे, मिली ने ध्रुव से कहा। ध्रुव गाड़ी से बाहर निकला और निश्चय से बोला, मैं आ रहा हूं, तब तक यहीं रहना। निश्चय को थोड़ा अजीब लग रहा था कि ध्रुव जैसा शख्स उस पर यकीन क्यों कर रहा था। जिस तरह से उसने पुलिस स्टेशन में एक झटके में उन आदमियों को मार गिराया था, उससे एक बात तो साफ थी कि वो कोई आम आदमी नहीं था। प्लीज सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो जगह आप जैसे लोगों के लिए सही नहीं है, हम खुद बखुद चले जाएंगे, मिली ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। उसे ध्रुव के सामने शर्मा रही थी उसे अपने घर ले जाने में। मुझे बहस करने की आदत नहीं है और ना ही बहस करने वाले लोग पसंद है, जितना बोला है उतना करो, ध्रुव बोला। मिली के सामने कोई रास्ता नहीं था, उसने ध्रुव को अपने पीछे आने को कहा और अपने भानी बहनों को लेकर आगे आगे चलने लगी। लगभग 10 मिनट चलने के बाद वे एक घर के आगे पहुंची। वो एरिया ध्रुव के बाथरूम से भी छोटा था, एक कमरा जिसके अंदर किचन और सोने की जगह थी। वहां आसपास काफी बदबू भी फैली हुई थी। ध्रुव ने मन ही मन कहा, तुम्हें देखकर कभी लगा नहीं कि तुम इस तरह की जगह पर रहती हो, तुम्हारी तो शक्ल भी तुम्हारे भाई बहनों से नहीं मिल रही है।
यही है हमारा छोटा सा घर, इस एक कमरे में हम लोग रहते हैं, मिली ने अंदर आकर बताया। क्या तारा भी यहाँ तुम्हारे साथ रहती है, ध्रुव ने पूछा। मिली ने हाँ में सिर हिला दिया था। वो धीमी आवाज में बोली, तारा दीदी हम लोगों में सबसे बड़ी है, हम भाई बहनों के अलावा हमारा कोई नहीं है। मिली की कहानी सुनने के बाद ध्रुव को थोड़ा अफसोस हो रहा था। तभी मिली की एक छोटी बहन ने मिली का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन दीदी तारा दीदी कोई। मिली समझ गई थी कि उसकी बहन क्या कहने की कोशिश कर रही थी। उसने जल्दी से उसका मुंह बंद किया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ जैनी, तारा दीदी भी आ जाएगी, वो हमारे साथ कैद नहीं थी क्योंकि वो बुरे आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। ध्रुव ने मिली की तरफ घूरकर देखा और शक भरी निगाहों से कहा, तुम लोगों के नाम क्रिश्चियन क्यों हैं, तारा का नाम अलग है और तुम्हारा सरनेम तो अग्निहोत्री है। वो हम लोगों की माँ क्रिश्चियन थी और पापा अग्निहोत्री, हमारे कुछ भाई बहनों के नाम क्रिश्चियन हैं तो किसी के हिंदू धर्म के हिसाब से रखे हुए हैं, मिली ने सफाई देते हुए कहा। ध्रुव ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर बोला, तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, मेरे साथ चलो। क्या, नहीं, हम हमारा घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं आप लोग भी हमें कैद तो नहीं करने वाले, पिछली बार भी उन लोगों ने कुछ ऐसा ही कहा था और फिर हमें बंद कर दिया था, मिली जल्दी से बोली। कहीं कैद नहीं करूंगा, बस कहा ना मेरे साथ आओ, ध्रुव सख्त आवाज में बोला और उन्हें लेकर निकल गया था। मिली की बातें उसके दिमाग में शक पैदा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ तारा वापस से युग के विला में आ चुकी थी। चेंज करने के बाद वो सेकंड फ्लोर की बालकनी में खड़ी ध्रुव और मेहर के बारे में सोच रही थी। तारा की आंखों में ध्रुव और मेहर का डांस घूम रहा था, जहां वे एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे। वो लड़की मेहर रायचंद, वो ध्रुव के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। हम दोनों का तो क्लास भी सेम नहीं है, शायद उस जैसी लड़की ही राणा फैमिली की बहू बनना डिजर्व करती है और ध्रुव की पत्नी, तारा ने मन ही मन कहा। तारा अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। तारा हड़बड़ाकर दूसरी तरफ पलटी तो उसके सामने ध्रुव खड़ा हुआ था। तारा जल्दी से कुछ कदम पीछे हो गई थी। ध्रुव का बर्ताव पिछले कई दिनों से तारा के साथ अच्छा नहीं था, ऐसे में अचानक उसे अपने सामने देखकर तारा थोड़ा चौंक गई थी। कुछ काम था मुझसे, तारा ने तुरंत अपनी नजरें नीचे करके पूछा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों की उदासी ध्रुव को पता चले। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मैंने तुम्हारे भाई बहनों को ढूंढ लिया है, ध्रुव बोला। उसकी बात सुनकर तारा ने जल्दी से अपनी नजरें ऊपर की, अचानक उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी, जिसे देखकर ध्रुव को मन ही मन काफी अच्छा लग रहा था। इतने दिनों बाद उसने तारा को मुस्कुराते हुए देखा था। क्या सच में वे सब ठीक है ना, क्या तुमने उन्हें घर पर छोड़ दिया है, क्या आप मैं अपने घर जा सकती हूँ ना, तारा ने जल्दी जल्दी उससे सवाल पूछना शुरू कर दिए थे। हाँ वे बिल्कुल ठीक है और मैंने उन्हें सही जगह पहुंचा भी दिया है, ध्रुव ने जवाब दिया। सही जगह से तुम्हारा क्या मतलब है ध्रुव, तुमने उन्हें घर पर नहीं छोड़ा क्या, तारा ने घबराते हुए पूछा। उसे डर लग रहा था कि कहीं ध्रुव ने उसका सच पकड़ तो नहीं लिया है। सही जगह से मेरा मतलब है कि उनके लिए एक अच्छा घर लेकर उन्हें वहां सेटल कर दिया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तारा कि तुम इतनी छोटी सी घटिया जगह पर रहती हो, मैं तुम्हारे घर गया था और मुझे वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, फिलहाल जल्दबाजी में मुझे ज्यादा अच्छा लोकेशन नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैंने जल्दबाजी में इंतजाम कर दिया है, तुम्हारे भाई बहन वहीं पर हैं और तुम भी अब से वहीं पर रहोगी, ध्रुव ने तारा को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर तारा ने अपना सिर पकड़ लिया था। अचानक तारा को भी याद आ गया, मिली स्लम एरिया में रहती थी और इस वजह से ध्रुव को गलतफहमी हो गई कि तारा भी उसी जगह पर उनके साथ रहती होगी। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो, ध्रुव ने तारा का बना हुआ मुंह देखकर पूछा।
बात खुश होने की नहीं है ध्रुव, तुम्हें हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने की कोई जरूरत नहीं थी। हम तुमसे किसी तरह का घर नहीं ले सकते हैं और मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं उन्हें दूसरे एरिया में सेटल कर लूंगी। मुझे किसी से एहसान लेना अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मैं इतने दिनों से तुम्हारे घर पर रह रही हूँ, मिली ने सफाई देते हुए कहा। एहसान नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें एहसान लग रहा है तो तुम रेंट पे कर देना, ध्रुव ने जवाब दिया। तारा ने गहरी सांस लेकर उसकी बात पर हामी भरी, फिर उसने मुस्कुराकर धीमी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच ध्रुव, तुमने अपना वादा निभाया, लेकिन अब वादा निभाने की बारी मेरी है। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, यही सही रहेगा। मैं अब और तुम लोगों की लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे उस जगह छोड़ाओ जहाँ तुमने मेरे भाई बहनों को छोड़ा है। तारा को अच्छा मौका मिल गया था जब वो ध्रुव की जिंदगी से दूर जा सकती थी, मिली और उसके भाई बहनों को वो सुरक्षित जगह पर सेटल कर सकती थी, और फिर उसे हमेशा के लिए देश छोड़कर यहाँ से ध्रुव से दूर जाना था। वहीं न जाने क्यों तारा के जाने की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे के भाव बदल गए थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो अगर तारा उससे दूर चली गई तो वो कभी उसे नहीं देख पाएगा। वहीं दूसरी तरफ कबीर पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसने वहां का हाल देखा तो वो समझ गया था कि ये किसने किया होगा। उसका शक इस वक्त ध्रुव के बजाय तारा पर जा रहा था। तारा अग्निहोत्री, कबीर गुस्से में जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये सब तुमने किया है ना, जिस माफिया के प्यार में आकर तुम मेरे साथ गद्दारी कर रही हो, सोचो उसके सामने तुम्हारा सच आ गया तो क्या होगा। तुमने मुझे धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब तुम्हारा जो हश्र होगा वो तुम्हारा माफिया बॉयफ्रेंड ही करेगा, वो भी तुम्हारा सच जानने के बाद। कबीर ने अपने गुस्से में ध्रुव के सामने तारा का पर्दाफाश करने का सोच लिया था। फिलहाल के लिए इतना ही, क्या ध्रुव तारा को खुद से दूर जाने देगा या तारा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? अगर इस बीच कबीर ने अपनी चाल चली तो सच में तारा मुसीबत में फंस जाएगी।